السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. उम्मीद है कि आपने कल की बातों पे गौर किया होगा और अपने दिल से कोशिश की होगी कि हम कीनों को ख़त्म कर दें। इमाम ज़हबी ने मसूद अल हमज़ानी के बारे में लिखा है, उनके हालात में, कि वो बहुत अच्छे आदमी थे। जब लोग उनके साथ कुछ बुराई करते थे तो वो ये कह के माफ़ कर देते थे कि जो बातें गुजर गईं वो गुजर गईं, बातें याद नहीं की जाती, यानी इधर गुजर कर दिया करते थे। तो जब उनकी वफ़ात हो गई तो किसी ने उनको ख्वाब में देखा। ख्वाब में ये देखा कि वो बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछा कि आपके साथ क्या सलूक किया गया। कहने लगे, मुझे मेरे रब ने सामने खड़ा किया और फरमाया, ए मसऊद, गुजरी हुई बातें याद नहीं की जाती, जो गुजर गया सो गुजर गया, और फरिश्तों से कहा इसे जन्नत में ले चलो। तो वाकई अगर इंसान ऐसे ही सोचे, जो गुजर गया सो गुजर गया, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए यही मामला फरमाएगा। उम्मीद है कि वहां पे जाके कहा जाएगा कि जो गुजर गया सो गुजर गया। तो हम भी दरगुजर करें और जो पिछली बातें उनको याद ना करें। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में भी आता है कि उनको कोई अजियत देता था तो बस इतना कहते थे, अल्लाह ही मेरे लिए काफी है, बस ये इतना फरमाते थे। वो साबिर इंसान थे, इंतकाम नहीं लेते थे, बर्दाश्त कर जाते थे। तो ये मामला जो नेक लोग होते हैं उनका ऐसा ही मामला होता है कि वो अपनी बातों का इंतकाम नहीं लेते जो उनके साथ कोई भी ज्यादती करे। बल्कि हसन बसरी के बारे में तो ये आता है कि एक रात दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह, जिसने मुझ पे जुल्म किया उसको तू माफ़ कर दे, अल्लाह जिसने मुझ पे जुल्म किया तू उसको माफ़ कर दे। इतनी ज़्यादा ये दुआ की कि उनका पड़ोसी अगले दिन आया और कहने लगा कि मैं रात को ये इतना सुन रहा था, बार बार ये कह रहे थे अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे जिसने मुझ पे जुल्म किया है, तो मेरा तो दिल करता है कि मैंने ही आपके ऊपर जुल्म किया होता, आप उसके लिए इतनी माफ़ी मांग रहे थे। तो फरमाया कि मैंने ये आयत पढ़ी है, फमन आफा वास्ला फाजरहू अला, कि जो माफ़ कर दे और इस्लाह कर ले तो उसका अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है, अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले लिया उसका अजर। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इसका अजर दे। तो वो इस तरह माफ़ कर दिया करते थे। तो हमारी कोई बड़ाइयाँ नहीं, हमारी कोई, हमारी ज़ात कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें कोई कुछ कह भी दे तो इतना हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जैसे सुफियान सॉरी फरमाते ना, कि जब इंसान अपनी ज़ात को पहचान लेता है ना, फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या कहता है। तो जब हमारी ज़ात ही कुछ नहीं, हमने ये समझ लिया, तो फिर इसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ और इतनी ज़्यादा दिल के अंदर बोगुज़ और कीने रखने का क्या फ़ायदा। हाँ, हम बहुत बड़ी कोई चीज़ अपने आप को अगर समझते हैं तो फिर तो जाहिर है फिर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं समझते तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। और आज जुमा का दिन है जो बहुत मुबारक दिन है, और अल्लाह ताला ने इस दिन को दिनों का सरदार करार दिया है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया था, इसी दिन कयामत आनी है, यही वो दिन होगा जिसमें जन्नत में अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे जन्नतियों को, इसी को यौमुल मजीद वहाँ पे कहा जाएगा। और यही वो दिन है जो इस उम्मत को दिया गया कि वो अपनी इबादत के लिए इस जुमे को इख्तियार करें। इसमें वो घड़ी भी मौजूद है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, इंसान जो भी दुआ मांगे वो कबूल की जाती है। वो घड़ी बाज़ कहते हैं जुहर से लेके मगरिब के दरमियान है, बास कहते हैं आसर से मगरिब के दरमियान है, तो अगर जुहर से मगरिब तक के दरमियान आप नहीं भी दुआएं कर सकते तो कम अज़ कम आसर से मगरिब के दरमियान दुआएं ज़रूर करें। और ख़ासुल ख़ास आज के दिन को दरू शरीफ के लिए खालिस कर लें कि दरू शरीफ आज के दिन बहुत ज़्यादा पढ़ें। वैसे दरू शरीफ पढ़ना जो है ना, उससे फ़ायदा ये मिलता है कि वैसे भी इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पे एक दफ़ा दरूद भेजता है उसके 10 गुना अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। तो 10 गुना तो वैसे ही माफ़ हो गए एक दफ़ा दरूद भेजने, और ना सिर्फ ये बल्कि 10 नेकियां भी मिलती हैं, 10 दर्जे भी बुलंद होते हैं। और अगर हम चाहते हैं अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत कर दे, या अल्लाह हम पर अपनी रहमत कर दे, तो दरू शरीफ वो जरिया है जिसके जरिए अल्लाह ताला की रहमतें हम पे नाजिल हो सकती हैं। तो हम सब अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं, हमें कोई भी ऐसा नहीं जो उसकी रहमत के बगैर रह सकता हो। तो हम सब दो बहुत ज़्यादा दुरूद पढ़ें, जो चाहता है कि कयामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब करीब हो, इतना हजूम होगा वहाँ पे। कुछ कुछ लोग ही होंगे ना जो करीब होंगे, आप देखें दुनिया में जो VIPs होते हैं उनके करीब भी कुछ लोग होते हैं, बाकी लोगों को तो दूर दूर से ही उनको दिखाया जाता है कि ये मतलब उनको करीब नहीं आने दिया जाता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल करीब उनके साथ साथ में होते हैं। तो कयामत के दिन भी कुछ लोग होंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे। अब देखें हम दुनिया में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं पा सके, लेकिन कयामत के दिन अगर हम उनका साथ पाना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें दरू शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। इसी की बदौलत हम वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पा सकते हैं। और आप देखें कि एक बड़ी प्यारी बात कही जाती है, उलमा कहते हैं कि सहाबा कराम की जिंदगियों को देखें तो उनकी जिंदगी में एक मुख्तसर सा कलमा होता था, और वो क्या होता था? दिन और रात में वो बार बार एक बात कहते थे। जब उनसे पूछा जाता था ना कहाँ जा रहे हो, तो वो बड़े सादगी से जवाब देते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ। तो कहते हैं हमारे असलाफ कि हमने तो ये जुमला दुनिया में कभी नहीं सुना, और ना ही कभी सुन सकेंगे, लेकिन ए अल्लाह हमारे लिए इसे जन्नत में कहना लिख देना कि हमसे जन्नत में पूछा जाए कहाँ जा रहे हो, तो हम कहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहता है ना उस दिन, तो वो दरूद शरीफ बहुत पढ़े। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन शिफात भी उसी के लिए करेंगे जो आप पर बहुत ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ता हूँ। और क्या ही खुशकिस्मत हैं वो लोग के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात उस दिन पालेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें बहुत ही आसान ही इसका नुस्खा बता दिया, बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत मुश्किल नहीं है, कि जो सुबह और शाम को 10 10 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेज दे तो कयामत के दिन उसको आपकी शिफात मिलेगी। सुबह 10 यानी आप फजर के बाद 10 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और असर के बाद 10 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, बस इतना भी आप पढ़ लेते हैं तो आप शिफात के हकदार हो जाते हैं। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा जाहिर है उतना ही वो उसके लिए जाहिर है ज़्यादा मर्तबे हैं, ज़्यादा नेकियां हैं, ज़्यादा गुनाह बख्शे जाएंगे। और एक हदीस में तो हमें ये भी पता चलता है कि कोई शख्स जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजता है, तो आपने फरमाया जब मुझ पे दुरूद भेजता है कोई, तो जब तक उसके होंठ इन कलिमात को अदा करते रहते हैं, यानी उसकी जुबान पर जब तक ये कलिमात रहते हैं, फरिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते ही रहते हैं। अब जो चाहे ज्यादा कराना चाहे या कम, अब हम एक दूसरे को कहते हैं आप हमारे लिए दुआ करें, आप हमारे दुआओं में याद रखिएगा, पता नहीं वो बंदा याद भी रखता है कि नहीं रखता। लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ ना अल्लाह मैं क्या करूँ, मेरी दुआ है लेकिन कितनी सारी मेरी हाजतें हैं। मेरी कितनी सारी दुआएं हैं। और सबसे बड़ी जो दुआ है वो तो बख्शिश की दुआ है। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बख्शिश भी हो जाए और बहुत सारे काम है मेरे वो सारे ही हो जाए, तो मैं तो अपने लिए दुआएं करूंगी, लेकिन एक और मखलूक है जिसको अल्लाह ताला इस काम में लगा देता है कि जब बंदे दुरूद पढ़े तो तुम उनके लिए दुआएं रहमत करना। तो वो हमारे लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह इस पे अपनी रहमतें भेज। अल्लाह की रहमत मिल गई तो सब कुछ मिल गया, उसकी रहमत के साए में आ गए ना तो सब कुछ हासिल हो गया। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि सारे दुखों और गमों के लिए काफी है दुरूद शरीफ, सारे दुखों गमों के लिए, और गुनाहों की बख्शिश का भी जरिया। तो जब आपको कुछ भी ना समझ आए कि अब मैं क्या मांगू, इतनी ज्यादा चीजें हैं, तो दो चीजें हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, एक दुरूद शरीफ और एक इस्तिगफार। इस्तिगफार से भी ऐसा ही होता है कि इस्तिगफार से भी गुनाह झड़ते भी हैं और अजाब भी दूर हो जाता है। अल्लाह ताला का सजाएं, जो मुसीबतें हमारे ऊपर आनी होती हैं, जाहिर है वो हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं, तो जब गुनाह ही धुल जाएंगे तो फिर वो मुसीबत नहीं आएगी। तो इस्तिगफार के जरिए हम अपनी जो आने वाली मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां, मुश्किलात हैं, मसले मसाइल हैं, उन सबसे भी बच सकते हैं। और दरूद शरीफ से भी ऐसा ही है, क्योंकि ये भी दुखों दुख और गम कोई आ गए हैं तो उनके लिए दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करेंगे। अब जितनी देर बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, दुआएं होती जा रही, मिलती जा रही हैं दुआएं, और दर्जे बुलंद भी हो रहे हैं, नेकियां भी मिल रही हैं, गुनाहों की बख्शिश भी हो रही है, कितना कुछ मिल रहा है। और इसके साथ ही जो भी दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करेंगे वो भी कबूल हो जाएगी। तो ये दो चीजें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जब आज असर के बाद आपको वक्त मिले तो उस वक्त आप खूब खूब दुआएं करें और खूब खूब दुरूद शरीफ पढ़ें। और दुरूद शरीफ सबको पढ़ना आता है, सबको समझ है दुरूद शरीफ की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, ये दुरूद इब्राहिमी जो है, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। उनकी आल से मुराद उनका खानदान भी है और जो उनके पीछे चलने वाले भी हैं, उनके पैरोकार, उनका इत्तिबा करने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदु मजीद, के जैसे तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर ये अल्लाह रहमतें भेजी हैं। बेशक तू तारीफ के काबिल और बुजुर्गी वाला। तो ये दरूद इब्राहिमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद सिखाया। आप चाहें तो ये पढ़ लें, आप चाहें तो अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम अला नबीना मोहम्मद, इसमें सलात भी और सलाम भी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। या अल्लाह ताला तू उनके ऊपर रहमतें भी भेज दे और सलामती भी अल्लाह ताला उनके ऊपर भेज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इसकी बड़ी ही बरकात है जिंदगी के अंदर, अगर इंसान दुरूद शरीफ को लाजिम पकड़ ले और इस्तिगफार को लाजिम पकड़ ले, क्योंकि गुनाहों का बोझ हम सब के ऊपर है और गुनाहों का बोझ लेकर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। हसन बसरी फरमाते हैं ना कि मैं डरता हूँ अगर अल्लाह ने मेरे किसी गुनाह पर भी ये फरमा दिया कि जा मैं तुझे नहीं बख्शता, तो मैं क्या करूँगा। उनके वो कितने खौफजदा होते थे, बड़ा बेवकूफ़ है जो गुनाह करता है और बेफिक्र रहता है और उसको फिक्र ही नहीं होती कि मैं गुनाह करता जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। और गुनाह से निजात और इससे पाकी सिर्फ और सिर्फ इस्तिगफार के जरिए हो सकती है, या फिर मुसीबतें आए तो फिर इंसान के गुनाह धुल सकते हैं। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर मुसीबतें आए तो तभी हमारे गुनाह धुलें, हम तो चाहेंगे कि इस्तिगफार से ही हमारे गुनाह धुल जाएं और हम पाक साफ हो जाएं, क्योंकि ये इजीएस्ट वे है गुनाहों को झाड़ने का। इससे ज्यादा कोई इजी वे नहीं है। और जबकि ये दिन और रात चल रहे हैं कि रमज़ान का महीना, और रमज़ान ऑलरेडी एक मुबारक महीना है और उसके अंदर मुबारक दिन जुमे का, तो दो बरकतें मिल गई ना। जब जब भी आप कोशिश किया करें कि दो तीन बरकतों वाले टाइम एक साथ मिल जाएं, मिसाल के तौर पे जुमे की जो सहरी का टाइम है वो जुमा भी है, सहरी का टाइम भी है और रमज़ान भी है, तो वो भी, और फिर दूसरा जुमे की घड़ी भी है और जिसमें दुआएं कबूल होने का ज़्यादा उलमा कहते हैं, क्योंकि ये बताई नहीं गई कि कौन सी घड़ी है, लेकिन छोटी सी घड़ी है मगर है कोई जोहर से मगरिब या असर से मगरिब के दरमियान, उसमें आप रोज़े से भी हैं और आप साथ साथ दुरूशरीफ भी पढ़ें और साथ आप इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं, तो आपकी ज़्यादा चांस है कि आपकी दुआ कबूल हो जाए। तो इसलिए ज़रूर अपने गुनाहों को सोच के और उनके ऊपर इंसान पशेमान भी हो, इंसान रोए भी। इब्ने जौज़ी फरमाते हैं कि सलफ सालिहीन जो थे, हमारे पहले पुराने नेक लोग, वो मुत्तकी और परहेजगार होते थे, इसके बावजूद वो रोते थे, और तुम गुनाह करते हो उसके बावजूद हंसते हो। अल्लाहु अकबर। इसलिए ये इमाम इब्न अल-क़य्यिम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने 7 समंदर पैदा किए मगर मोहब्बत तेरे एक आंसू से की है, और तू वो भी ना बहा सका। अल्लाह अकबर। तो ये जो गुनाह है ना, इनको याद करके रोना गुनाहों को मिटा देता है, ऐसे ही जैसे हवा चलती है तो खुश्क पत्ते दरख्तों से गिर जाते हैं ना, इसी तरह इंसान जब रोता है अल्लाह ताला के आगे, तो अल्लाह ताला उन उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है, उसके ऊपर अपनी नजरे रहमत करता है। अल्लाह ताला ना सिर्फ उसको बख्श देता है बल्कि अपने इनामात से उसको नवाजता है। तो अल्लाह अकबर। खास तौर पे जो बूढ़े लोग हैं, मैं उनको भी कहूंगी कि वो भी अल्लाह ताला के सामने इस तरह से मुनाजात करें, ऐसे दुआएं करें कि जैसे हमें पता चलता है इमाम फरयाबी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैं मुजदलफा में रात को जाग रहा था तो देखता हूँ कि एक बूढ़ी औरत है नमाज पढ़ रही है, उसके पास उसका एक बूढ़ा शौहर है जो दुआएं कर रहा है और कह रहा है, मौला हमने दुनिया वालों को देखा जब गुलाम उनकी खिदमत करते करते बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने गुलाम को आजाद कर देता है, हम भी तेरी बंदगी करते करते बूढ़े हो गए, हमें भी आग से आजाद कर दे। तो इसलिए हमें इस तरह से दुआ करनी चाहिए कि जिसमें आंसू भी हों, जिसमें गिरियाउजारी भी हो, जिसमें आजजी भी हो, और जिसमें जैसे हम अपने जहन में रखें इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन, कि अल्लाह ताला अगर तूने ना माफ किया तो तेरे सिवा कोई है नहीं जो हमें माफ कर दे। एक बुजुर्ग थे, एक नौजवान के साथ हज करने के लिए गए, कायद बयान होती है, तो जब राम बांध के कहा लब्बैक तो एक आवाज आई ला लब्बैक का, तेरी कोई लब्बैक कबूल नहीं है। नौजवान ने उनसे कहा, क्या आपने ये जवाब सुना है? बूढ़े ने कहा, हाँ मैं तो 70 साल से यही जवाब सुन रहा हूं, लेकिन मैं हर दफा कहता हूँ लब्बैक और जवाब आता है ला लब्बैक। तो नौजवान ने कहा, फिर आप क्यों आते हैं, सफर की तकलीफ उठाते हैं, खुद को थकाते हैं? तो बूढ़ा हाजी रोके कहने लगा, फिर मैं किसके दर पे जाऊं, मुझे चाहे रद्द कर दिया जाए या मुझे कबूल किया जाए, मैंने तो बस यही आना है, इसके दर के सिवा मेरे पास तो कोई और दर है नहीं, कहीं पनाह ही नहीं। तो गैब से आवाज आई, जा तेरी सारी हाजिरियां कबूल होगा। ये तफसीर रूहुल बयान में ये एक आयत, अल्लाह ताला को बंदे के आंसू पसंद है कि इंसान अल्लाह ताला के आगे अपनी आजी का इजहार करे कि या रब तूने अगर माफ ना किया तो कोई दर नहीं है जहां पे मेरी बख्शिश हो जाए, और तूने मुझे कबूल ना किया तो कोई जमीन आसमान मुझे कबूल नहीं करेगा, लिहाजा मैंने जो भी मांगना है तुझी से मांगना है, और जो भी मुझे मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। तो इस आजी के साथ इंसान अल्लाह ताला से दुआएं करे और इन औकात को गनीमत जाने कि हमारे पास जुमा आ गया और हमारे पास रमजान आ गया और हमारे पास ये घड़ी आ गई, उसमें सारे काम और छोड़ दें और बस अपने गुनाहों के ऊपर माफिया मांगे और दुरूद शरीफ पढ़ते जाए।
और अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, वो दिलों के भेद जानता है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला हालांकि जानता है कि दिलों में क्या है, फिर भी उसको अच्छा लगता है कि बंदा उसको बयान करे, उसको बोले। हालांकि उसको पता है इसकी हाजत क्या है, ये चाहता क्या है, लेकिन जब आप बोलते हैं और अल्लाह ताला से कहते हैं ना, तो ये बात अल्लाह ताला को बहुत पसंद आती है। तो अपने दिल का हाल उसके सामने रखिए। उस तरह जब हम नमाज में भी होते हैं, अब हमने देखे कयाम का सारा सीखा के कयाम में हमने क्या क्या पढ़ना है, और अब हम जब नमाज में भी रुकू तक पहुंचते हैं, इंसान अल्लाह हु अकबर कहता है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, और ये कह के आप रुकू में चले जाते हैं, हाथ उठाते हैं और फिर रुकू में चले जाते हैं, और फिर आप अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, सुबहान रब्बी अल आज़ीम, सुबहान रब्बी अल आज़ीम, सुबहान रब्बी अल आज़ीम। तो ये भी क्या है, इसमें भी आप अल्लाह ताला की अजमत को बयान करते हैं। अल्लाह ताला की अजमत इस तरह से बयान करते हैं, पाक है वो, सुबहान का हमने माना पहले पढ़ा है कि पाक है वो जात, पाक है वो अल्लाह, सुबहान रब्बी, मेरा रब पाक है। अब वो पता है रब जो है ना, रब अल्लाह ताला की रबूबियत क्या है, ये हम पहले रब का माना देख चुके, और आप आपको जहन में ये माना होना चाहिए। और ये भी याद रखिए कि दुआ कबूल कराने के लिए इब्ने रजब फरमाते हैं कि सबसे मुअस्सर तरीका ये है कि अल्लाह ताला की रबूबियत का बार बार जिक्र किया जाए। आप देखेंगे नमाज में ना रब 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 की बार बार तकरार है कि तू ही मेरा रब है ना, तू ही मेरा पालने वाला, तू ही मेरा पैदा करने वाला, तू ही मेरा मालिक है, और तू ही मेरा, मुझे कायम रखने वाला, मेरी हस्ती को तू ही है। तो मालिक भी, खालिक भी, मेरा सस्टेनर भी, मेरी सारी जरूरियात को पूरी करने वाला भी, मेरी परवरिश करने वाला भी तू है। सुबहान सुबहान, पाक है रब्बी, मेरा रब, अल अजीम, जो अजीम है यानी हर ऐब से पाक है। 3 दफा तो आप वैसे ही कह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी कहना चाहे तो कह सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी रुकू की तस्बीहात करते थे, जैसे सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। लोगों को ये तस्बीह इतनी ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये भी सुनन अबी दाऊद में आती है कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दी ही भी कहते थे, और रुकू में ये भी कहते थे, सुबहानक व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता। तो ये भी कहते थे, अल्लाह तेरे, तू पाक है और सारी हम तेरे लिए है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। और आपको पता है रुकू और सजदे में आप दुआएं कर सकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते थे रुकू के अंदर आप ये भी तस्बीह कर सकते हैं, यानी डिफरेंट तस्बीहात आप चेंज कर करके कर सकते हैं। सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मग़फिरली, क्या जैसे हम सना में कह रहे थे ना सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो इसमें क्या सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना बीच में लगा दे, फिर उसके बाद व बिहम्दिका अल्लाहुम्मग़फिरली, इसमें अपने लिए दुआ भी है। हे अल्लाह तू पाक है, तू हमारा रब है, सारी तारीफ तेरे लिए ही है, या इलाही मुझे बख्श दे। तो इसमें अपने लिए दुआ भी आपने मांग ली। और सुब्हुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति व रूह, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदे में तस्बीह किया करते थे। तो बहुत सारी तस्बीहात हैं, और अगर इंसान इत्मीनान से रुकू करे, कोई जल्दी नहीं है रुकू करने में, बल्कि सोच सोच के करे, मेरा रब पाक है, अजीम है, या रब सारी पाकी और तारीफ तेरे लिए है, तू मुझे माफ कर दे। सुबहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति व रूह में भी यही चीज है कि मेरा परवरदिगार नहायत पाक है, बुजुर्गी वाला रब है वो, फरिश्तों का भी और रूह अमीन जिब्राइल अलैह सलाम का भी। और सुभान दिल जबरूती वल मलकूती वल किबरियाई वल अजमती, ये भी है। बस आप यानी अल्लाह ताला की तारीफ के कलिमात, सुबहान है दिल जबरूत वल मलकूत वल किबरियाई वल अजमती, के गलबा बादशाही बड़ाई बुजुर्गी का मालिक अल्लाह पाक है। अल्लाह अकबर, तो कितनी आजी है इसमें। एक तो पोजीशन इतनी आजी की, ऊपर से इसके अंदर जो तस्बीहात भी की जा रही हैं उसमें भी अल्लाह तू पाक है, मेरा रब कितना पाक है, कितना अजीम है, कितनी तारीफें हैं उस रब की। और समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जब आपने पूरे इत्मीनान से रुकू कर लिया, जल्दी जल्दी नहीं करना, तो अब आप खड़े हो गए। जब खड़े हो गए ना, तो खड़े हो के भी आपने एकदम से सजदे में नहीं चले जाना, बल्कि आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा आराम से कहना, इत्मीनान से, कि इसका मतलब क्या, समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, किसकी सुन ली, लिमन हमीदा, उसकी जिसने उसकी हम्द की है, यानी मेरी सुन ली, मैंने ही तारीफ की ना अभी अल्लाह ताला की रुकू में जाके। तो जब सीधे खड़े हुए, रफा यदैन करते हुए सीधे खड़े हो जाएं, बुखारी की मुस्लिम की, बुखारी और मुस्लिम दोनों की ये रिवायत है, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाते थे, रफा यदैन करते हुए सीधे खड़े हो जाते थे, ये नहीं कि अल्लाह अकबर में करना है, बल्कि उठते ही जब सर उठा रहे हैं उस वक्त रफा यदैन करते हुए सीधे खड़े हो गए, और फिर आपने कहना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और फिर रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब, लकल हम्द, तेरे लिए तारीफ है। कितनी तारीफ, कितनी तारीफ, यहां तक भी कह सकते हैं, लेकिन जब किसी ने ये कहा था आगे भी, हमदन कथीरन तय्यिबन मुबारकन फी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होके पूछा, वो कौन है जिसने ये कलिमात पढ़े हैं, तो एक आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह मैं था। आपने फरमाया, मैंने 30 से भी ज्यादा फरिश्ते देखे जो इन कलिमात का सवाब लिखने के लिए जल्दी कर रहे थे कि हम जल्दी जाके लिखें। अल्लाह अकबर, तो सिर्फ 3 और कलिमात आगे, यानी रब्बना वलकल हम्द यहाँ तक ही ना कहे, आगे भी कह दे हमदन, हमद कसीरन बहुत ज्यादा, तय्यिबन पाकीजा और मुबारकन बहुत बाबरकत, बहुत ज्यादा पाकीजा और बाबरकत तारीफ है, ए हमारे रब तेरे लिए, तेरे ही वास्ते। तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था, नमाज सारी की सारी मोहब्बत का नगमा है, कि सारी नमाज में इंसान मोहब्बत से अल्लाह ताला से कलाम कर रहा होता है। और भी हैं, जब आप अपना सर रुकू से उठाते हैं, तो और भी हैं दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, वो गो के हमें नहीं आती, तो लेकिन जैसे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिल अस्समावात व मिल अल अर्द व मिल अमा शिता मिन शैइन बाद। तो जैसे आप देखते हैं हरम में आप जाते हैं ना, बहुत देर वो इस तरह खड़े रहते हैं कौमे में, तो आप सोचते हैं ना कि इतनी देर क्या ये पढ़ रहे हैं, तो इससे भी ज्यादा दुआएं हैं, और बहुत प्यारी दुआएं हैं जिसके अंदर आप अपनी बख्शिश भी मांग लेते हैं खड़े खड़े। तो इसलिए ये चीज़ों, ये दुआएं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें अगर हम याद कर लें, और उसके बाद जब आप इत्मीनान से सीधे खड़े हो गए, जिसको कौमा कहते हैं, तो उसके बाद फिर आपने खड़े होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो रुकू सजदा और 2 सजदों के दरमियान बैठना और रुकू से उठ के कौमा में खड़े होना बराबर होता था, ऐसा नहीं होता था कि बस खड़े ही हुआ और जल्दी से चले गए, नहीं, कयाम और तशहुद ज्यादा ही लंबे होते थे, लेकिन ये चारों चीजें इक्वल होती थी, रुकू सजदा और कौमा और जलसा, जब आप 2 सजदों के दरमियान बैठते। तो बाज दफा ऐसे होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौमा, ये जो समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहने का ये जो है ना, इसको कौमा कहते हैं, इतना लंबा होता था, हजरत अनस फरमाते हैं कि इतना लंबा होता था कि हम सोचते थे कि शायद आप भूल तो नहीं गए, अल्लाह अकबर, तो इतना लंबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से खड़ा होने का टाइम पीरियड लेते थे। तो ये था अभी तक का हमारा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सजदे के मुतालिक पढ़ेंगे, और आज की दुआ भी एक बड़ी प्यारी दुआ है, गुनाहों की बख्शिश की दुआ है, और उसमें और भी दुआएं हैं, क्योंकि ये दिन दुआओं की है और दुआओं की कबूलियत की है। لہٰذا ہم ان میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور دعا
اللهم اغفر لي خطائي وعمدي كلها، اللهم انعشني واجبرني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت.
اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ مجھے تندرست کر دے، اللہ میرے سیدھے کر دے ساری چیزوں کو، میرے مجھے صالح اعمال کی طرف میری رہنمائی کر دے، والاخلاق اور اچھے اخلاق کی طرف، اے اللہ کہ بے شک تو ہی ہدایت دے سکتا ہے نیک اعمال کی طرف، اور اور کوئی نہیں دے سکتا، اور گناہوں سے بچانا بھی تیرا ہی کام ہے اور کوئی نہیں کر سکتا یہ، تو ہم اس میں توفیق بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، گناہوں کی بخشش کی توفیق، نیکیوں کی توفیق اور گناہوں کی بخشش کو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اسی طرح صالح اخلاق بھی اور صالح اعمال کی طرف رہنمائی بھی مانگتے ہیں، اور اپنی اچھی صحت بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اچھے رہیں گے تو پھر ہم آگے کچھ کر بھی سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری سارے ہی اعمال کو قبول فرما لے. جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان دنوں میں، ان کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے دیں، اگر کوئی عورت ایسی ہے جو کچھ روزے رکھ سکتی ہے کچھ نہیں رکھ سکتی، تو وہ پھر جن دنوں میں روزے نہیں رکھ رہی کسی وجہ سے حاملہ ہے یا دودھ پلاتی ہے، تو ان دنوں کو گن لیں، ان کا فدیہ وہ اینڈ میں دے سکتے ہیں، جتنے رکھ سکے اتنا ہی اچھا ہے. لیکن اگر کوئی اتنے بڑھاپے پہ یا ایسی بیماری میں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ پورا مہینہ رکھ ہی نہیں سکیں گے، تو وہ ابھی سے فدیہ دے دیں، وہ اینڈ کا انتظار نہ کریں، اور فدیہ کم از کم 1.5 کلو آپ اناج کے برابر ایک دن کا یہ فدیہ دیکھ لیں آپ کے ہاں کتنا ہے، تو اتنا اناج آپ دے دیں، راشن دلوا دیں کسی کو، یا پکا ہوا کھانا کسی مسکین کو دے، مسکین کو، غریب ہونا ضروری ہے، مسکین ہونا ضروری ہے کہ اس کو آپ دیں گے، اور کیش نہ دیں کہ وہ اس سے کچھ اور چیزیں خرید لے، یہ صرف کھانے کے لیے ہی ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ ان کے لیے کھانے کا کھانا کھلایا جائے مسکین کو، تو راشن بھی دے سکتے ہیں 30 دن کا، اگر آپ 30 دن کے روزے نہیں رکھیں گے، یا پھر 30 لوگوں کو ایک دن ہی کھلا دیں، تو دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے روزے کا فدیہ خود ہی ساتھ ساتھ دیں. بعض دفعہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اپنے بتاتے ہیں کہ ہمارے والدین روزے نہیں رکھ سکے تھے اور فدیہ بھی نہ ان کا دیا، تو اس وقت ہی فدیہ دینے کے لیے اگر آپ کے والدین نہیں رکھ سکتے تو ان کو بھی اس طرف توجہ دلائے کہ فدیہ تو دے دیں، اور گھر میں کوئی بھی آپ کے بزرگ یا بوڑھے ہیں ان کو نہیں اتنی اب سمجھ رہ گئی، تو ان کی طرف سے بھی آپ فدیہ ادا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے یہ روزے بھی چکھنا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے اس کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی، ورنہ ہمیشہ زندگی میں موقع نہیں ہوتا کہ انسان روزہ رکھ سکے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.